නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ඕම් නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය භගවතේ වාසුදේවාය ග්‍රන්ථාශිම භාගවතම් සප්තම ස්කන් අධ්‍යාය සංඛ්‍යා 2 අධ්‍යාය ක නාම හැ අසුරාජ හිරණ්‍යකශිපු ශ්ලෝක සංඛ්‍යා 16 එවං විප්‍රකර්තේ ලෝකේ දෙත්‍යාන්ද්‍ර නුචර මුඛෝ දේවම් දේවා පරිත්‍යජ්‍ය භුවිචිරුර ලක්ෂිතා එවං විප්‍රකර්තේ ලෝකේ දෙත්‍යාන්ද්‍ර අනුචරේ මුඛෝ දේවම් දේවා පරිත්‍යජ්‍ය චේරුර ලක්ෂිතා එවං විප්‍රකර්තේ ලෝකේ දෛත්‍යන්ද්‍රානුචරේ මුඛය දිවම් දේවාහ පරිත්‍යජ්‍ය භූමි චේරුර ලක්ෂිතා ශබ්දාර්ථ අනුවාද එවං තාත්පර්ය ඒසී භක්ති වේදාන් ස්වාමී ශ්‍රී ප්‍රභුපාද ජී කේ ద్వారా ශ්‍රී ප්‍රභුපාද කි එවම් ඉස් ප්‍රකාර විප්‍රකර්තේ සතයි ජාකර ලෝකේ ජබ් සාරේ ලෝක දෛත්‍ය ඉන්ද්‍ර අනුචරයි දෛත්‍ය රාජ හිරණ කශ්‍යපු කේ අනුයායියෝ ద్వారా මොහු පුනහ පුනහ දෙවම් ස්වර්ග ලෝක කෝ දේවහ දේවතාගණ පරිත්‍යජ්‍ය ත්‍යාග කර භෝවේ පෘථ्वी ලෝක පර චේරු ঘুমනේ ලගේ උපদ্রব কা વિસ્તાર દેખને કે લિયે અત અલક્ષિતહ અસુરો સે છિપ કર અનુવાદ इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञों का फल ना पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अलक्षित होकर विपत्तियों का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक पर इधर उधर विचरण करने लगे। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ संपन्न करने से मनुष्यों तथा देवताओं को अन्य आश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। जब असुरों के उत्पातों से यज्ञ होने बंद हो गए तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से वंचित रह गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी। अतः वे पृथ्वी लोक पर यह देखने के लिए कि लोग किस प्रकार विचलित हो रहे हैं और यह विचार करने कि क्या करना चाहिए उतर आए। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आज के भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो प्रसंग चल रहा है सातवें स्कंद में, नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दे रहे हैं कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से इतना वैर क्यों करते थे और वो एक असुर थे और उनके पुत्र इतने महाभागवत कैसे बने। उसके उत्तर में नारद मुनि अब असुरराज हिरण्यकश्यप का चरित्र बता रहे हैं। जैसे कि उस दिन कथा में बताया जा रहा था कि जब हम प्रकाश को तभी उसकी प्रशंसा करेंगे जब हम अंधकार से निकलकर प्रकाश में जाएंगे। इसलिए प्रहलाद के चरित्र आने से पहले हिरण्यकश्यप के चरित्र को विस्तार में बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो कितना शक्तिशाली था, उसके पास कितनी शक्तियाँ थी और वो असुरों का राजा था। आदि दैत्य उनको बोला जाता है। और प्रहलाद महाराज एक मासूम बालक थे 5 वर्ष के, और कितनी यातनाएं उन्होंने सही, इससे भक्ति की और भक्तों की महिमा और निखर के आती है। इसलिए हिरण्यकश्यप के चरित्र को यहाँ समझाया जा रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष के वध के लिए, हिरण्याक्ष उनके भाई थे जिनका वध भगवान ने वराह अवतार में किया, तो उन्होंने सोचा है मुझे विष्णु का वध करना है और दूसरा पृथ्वी लोक पर जाकर तबाही मचा देनी है, वैदिक संस्कृति को नष्ट कर देना है, जिससे अंततः जो उनके मसौरे भाई हैं देवतागण वो पीड़ित हो सके। उसका लक्ष्य देवताओं को पीड़ा पहुंचाना था, देवताओं को दुखी करना था। उन्होंने बोले विष्णु का हम वध करेंगे और पृथ्वी लोक पर, केवल पृथ्वी लोक ही ऐसा लोक है जिस पे जहाँ पे मनुष्य योनि में मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो बोले देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, इसलिए जो ब्राह्मण संस्कृति है, जिस ब्राह्मण संस्कृति से प्रेरित होकर यज्ञ करते हैं, उस संस्कृति उस कल्चर को ही समाप्त कर देंगे तो यज्ञ बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि जाओ जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है उसको बंद कर दो, पूरे शहरों में गांवों में आग लगा दो, जहाँ पे ऋषिगण संत लोग रहते हैं उनकी कुटिया को आग लगा दो, जहाँ गायें हैं उनकी हत्या कर दो, जहाँ गायों के लिए चारा लगा हुआ वहाँ पे आग लगा दो, शहरों को छोड़ दो, सारी दीवारें तोड़फोड़ कर दो, और बार बार मुहर मुहर, यहाँ लिखा हुआ है शब्द आता है मुहर मुहर, और ये जो घटना है ये सतयुग की है, इसलिए ये घटनाएं अप्राकृतिक लग रही है, अननेचुरल लग रही है। कलयुग में तो ये होता ही रहता है, कलयुग में ऐसे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, न्यूज आती है खत्म हो जाती है, हम भूल जाते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसी मानसिकता कि वैदिक संस्कृति को बंद करना है, समाप्त करना है, और ऐसे अत्याचार, तो एवं अब विप्र करते, इस तरह की अप्राकृतिक घटनाएं वो भी बार बार हो रही है। दैत्यांध्र अनुचरे, जो दैत्यों के राजा हैं हिरण्यकश्यप, उनके अनुचरों द्वारा मुहर बार बार, तो लोग विप्र करते हैं। ये अननेचुरल घटनाएं देखकर लोगों ने क्या किया, लोगों ने वैदिक संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति द्वारा यज्ञ थे वो बंद कर दिए, और जब यज्ञ बंद हो गए तो देवतागण भी विचलित हो गए। तो देवतागण विचलित होकर क्या किया, बोले क्या हो रहा है, हमारे को कुछ मिल नहीं रहा। जैसे कि हम देखते हैं गोवर्धन लीला में भगवान ने नंद महाराज से यज्ञ बंद कराया, तो इंद्र कितने विचलित हो गए। इसी ढंग से हम लोग इस भौतिक संस्कृति में आज आधुनिक युग में समझ नहीं पाते कि देवताओं का क्या हमारे जीवन में उनका क्या रोल है, लेकिन वास्तव में वैदिक संस्कृति में बताती कि देवताओं का क्या रोल है, इससे मालूम चलता है। तो जैसे ही यज्ञ बंद हुए देवता भी विचलित हो गए, तो क्या हो रहा है, हमें यज्ञ दिए जा रहे थे यज्ञ नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, देवीम देवा परित्यज्य, अपने स्वर्गलोक को छोड़ दिया, भाई देखें क्या हो रहा है, पृथ्वी लोक में हो क्या रहा है। तो चेरु अलक्षिता, असुरों से छिप कर, अलक्षिता मतलब किसी को मालूम ना चले, और चेरु देखने गए भूवी की हो क्या रहा है पृथ्वी लोक पर, भूवी में पृथ्वी लोक पर, जैसे कि अभी केदारनाथ में बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया हुआ है, तो सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ गए हैं देखने क्या हो रहा है ना। इसी ढंग से देवता भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं सारा, तो उनको वो सेक्रीफाइस ही नहीं मिल रहा, उनको यज्ञ का परिणाम ही नहीं ना फल नहीं मिल रहा, वो विचलित हो गए। उनको मालूम है कि जरूर कुछ हिरण्यकश्यप के अनायी अत्याचार कर रहे हैं, क्या अत्याचार कर रहे हैं विस्तार में देखने के लिए, और छिप कर अपने स्वर लोग को छोड़कर पृथ्वी लोग कर आ गए हैं देखने के लिए हो क्या रहा है। बड़ी चिंता की बात है, सारे के सारे वैदिक संस्कृति नष्ट हो गई है और यज्ञ बंद हो गए हैं। तो इस श्लोक में हमें मालूम चलता है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यज्ञ का क्या महत्व है हमारे जीवन में। वास्तव में वैदिक संस्कृति में जो यज्ञ ही जीवन होता था, वैदिक संस्कृति का जो नैतिकता थी वो पूरे यज्ञ पर निर्भर करते थे, और यज्ञ जीवन इसलिए था कि यज्ञ से ही हमारे जो जीवन की मुख्य मूल आवश्यकताएं हैं, पानी, प्रकाश, वायु, भोजन, यज्ञ से आ जाता था बड़ी आसानी से, और इसके लिए किसी को संघर्ष भी नहीं करना पड़ता था, बहुत ही आसानी से ये सुविधाएं मिल जाती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो यज्ञ एक वे ऑफ लिविंग था, बिना यज्ञ के कोई जीवन हो ही नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकते थे कि यज्ञ के बिना कोई जीवन है। तो यज्ञ पूरे वैदिक संस्कृति का एक सार था, नैतिक स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड्स थे कि इतना तो यज्ञ तो हर कोई करेगा, और यज्ञ करके वो देवताओं को प्रसन्न करते थे और देवता उनसे ऐसे रेसिप्रोकेट करते थे। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा, भगवद गीता के 4वें अध्याय के 31वें श्लोकों में, नायम लोकस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तमा, हे कुरुश्रेष्ठ जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो ये जीवन भी दुखमय होगा, अगले जीवन का कहना है क्या, हम हमारा भविष्य भी और भी अंधकारमय होगा। तो जब सृष्टि की रचना हुई, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्व वाचर प्रजापति अनेन पशु धूमशे व अस्त इष्ट काम दुखा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की योजनाओं को जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत की रचना की है ताकि बद जीव वापिस उनके पास आ सके। तो ब्रह्मा जी भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको सृष्टि का कारागार पूरे उत्तरदायित्व दिया गया। तो उन्होंने सृष्टि जंग की रचना की और सृष्टि के साथ साथ यज्ञ बताए कि इस यज्ञ को करके मनुष्य बद जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, अपना एंजॉयमेंट वहाँ पे इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी कक्षा में बैठे थे, उन्होंने बोला कृष्णा क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर द एंजॉयमेंट। तो ऐसे सुनते ही जितने जो नए नए भक्त जुड़े थे विदेशी लोग सब मुस्कुरा पड़े, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। फिर भैया श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए, बोले कृष्णा क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर द एंजॉयमेंट नॉट योर्स फॉर हिज। भगवान ने ये जो भौतिक जगत की रचना की है अपने एंजॉयमेंट के लिए की है, हम इस बात को भूल जाते हैं। जो यज्ञ है, यज्ञ में कर्मकांड यज्ञ करेंगे, हम जाएंगे स्वर्ग लोकों में आनंद उठाएंगे, है ना, यहाँ पर हमें पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं, धन धनम देही पुत्रम देही स्त्री देही, जो इच्छाएं वो पूरी होंगी, जो आपकी इच्छाएं हैं वो यज्ञ के द्वारा पूरी कीजिए। अगर आपकी मदिरा पान करने की भी इच्छा, भी सूत्रमणि यज्ञ है, कुछ बहुत बड़ा यज्ञ करके फिर आपको 100 ml का एक पैक मिल सकता है, बहुत सा धन खर्चने के बाद, बहुत रहने करने के बाद। अगर आपको मांसाहार करने की इच्छा है वो भी आप कर सकते हैं, अमावस्या के दिन काली माता को एक बकरी ले जाइए और एक कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसको काटिए और खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्लॉटर हाउसेस नहीं खोलने, बुचर खाने नहीं खोलने, लेकिन इस जंग से यज्ञ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। लेकिन इस यज्ञ में इतनी शक्ति होती थी, इस यज्ञ की विधि में, क्योंकि इसमें सारे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के जो फल हैं उसके भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और जाने अनजाने में जो व्यक्ति यज्ञ करता था वो भक्ति कर लेता था, क्योंकि सारे यज्ञ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है यज्ञ पुरुष, यज्ञपति, यज्ञ। यज्ञ का साधारण अर्थ रूपा देते हैं, ऐसे जो भी कार्य जिससे भगवान प्रसन्न हो वो यज्ञ है। तो ना जानते हुए भी, हालांकि वो अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए यज्ञ करता था, लेकिन उस यज्ञ में नारायण का नाम होता था छिपा हुआ, उसको मालूम नहीं होता था। तो थोड़ी सी भक्ति हो उसकी प्रारंभ हो जाती थी, और भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि भक्ति का एक अंश उस पूरे प्रोसेस की भौतिकता का नाश कर देता था। और धीरे धीरे जो ये व्यक्ति है, वो बदजीव है, उसका स्तर ऊंचा उठता था, उसकी चेतना उत्कृष्ट होती जाती थी। तो ये पूरा वैदिक संस्कृति कितनी प्रैक्टिकल थी, वो मानती है ठीक है इस संसार में लोग भोग की इच्छा से आए हैं, तो भोग की इच्छा वो करना चाहता है तो उसको करने दें, लेकिन इस तरीके से उसको लिया जाता है कि अंततः वो बिल्कुल भगवान का भक्त बन जाए। लेकिन आज की संस्कृति में देखते हैं यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग बचपन से जिस ढंग से पढ़े पढ़े हैं, जिन ढंग से हमारी पढ़ाई हुई है, हमारे अपने जीवन में देवताओं का कोई भी रोल नहीं देखते। पानी चाहिए, मोटर है, स्विच ऑन कर दो, पानी आ जाएगा। लाइट चाहिए, इतने सुंदर सुंदर लाइट्स हैं, स्विच ऑन करो, लाइट आ जाएगी। पावर हाउस हैं, डैम्स हैं, जनरेशन है, टर्बाइंस हैं, सब कुछ हो रहा है ना। हमारे पास टीवी है, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, और क्या चाहिए, है ना। पेट्रोल भरा है गाड़ी से, कहीं भी घूमो फिरो, कुछ भी कर सकते हैं हम। कहाँ देवताओं का हमें रोल चाहिए, हमें मालूम नहीं चलता कि देवताओं का कोई रोल है हमारे जीवन में। जब तक हम प्रभुपाद जी के शरण में नहीं आए थे, देवता हमारे लिए टेलीविजन में कुछ दिखाई देते थे तो देख कर हंसी आती थी इन देवताओं के, क्या है ये सब, क्या करते रहते हैं। हमारे लिए एक माइथोलॉजी थे, एक ऐसी कोई चरित्र है, हंसी आती जिसको देखकर सब सब वहम की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। क्योंकि कहीं स्कूल कॉलेज में बताया नहीं कि देवतागण हमें प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने बोला कि सूर्य एक आग का गोला है, वहां से प्रकाश आता है, सब नेचर है, नेचर कुछ दे रही है, किसकी नेचर, किसने प्रश्न किया नहीं, क्या है नेचर, कुछ नहीं होता है नेचर, कुछ वहां से सब कुछ आ जाता है। लेकिन देवतागण है आदि यज्ञ, आदि देव, आदि भूत, भगवत गीता में बताया गया है। जो देवतागण है प्रकृति के, एक एक 33 करोड़ देवता एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एक वस्तु का देवता है, हमारे शरीर के एक एक अंग को कंट्रोल करने के लिए देवतागण है। और हम कितनी बड़ी अज्ञानता में है, हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र सोच रहे हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं हम अपने आप पूरी कर सकते हैं, हमें कोई देवताओं से लेना देना ही नहीं। तो यज्ञ का मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो आधुनिक युग है लेने पर निर्भर है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, चाहिए चाहिए, लेना है लेना है। लेकिन वैदिक संस्कृति देने पे थी। यज्ञ का मतलब है इंग्लिश में सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग, आपको देना है देना है। वैदिक संस्कृति देने पर थी, और आजकल आधुनिक जो जीवन शैली है वो लेने पर है। लेने का मतलब है शोषण करना, और लेने के बाद भी क्या है, व्यक्ति अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है। आज इसलिए संसार में हर चीज की हमें किल्लत, हमें कमी नजर आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति लेना चाह रहा है, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हर व्यक्ति लेना चाह रहा है, उसके लिए इसको हर जो रिसोर्सेज हैं, सुविधाएं, उसकी कमी लग रही है। घर घर में व्यक्ति को कमी लग रही है, भाइयों में लड़ाई हो रही है, लगता है कमी है ना, हर जगह उसका प्रमोशन भी हो या कुछ भी, लगता है कमी महसूस हो रही है। लेकिन शीला प्रभुपाद बताते हैं उस पूरी पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि अभी की जो जनसंख्या है वो 10 गुना भी जनसंख्या हो जाए तब भी बहुत अनाज उत्पन्न हो सकता है, तब भी बहुत कुछ पानी उपलब्ध है। सब कुछ प्रकृति हमें देगी, देवतागण हमें देंगे, अगर हम उनसे कोऑपरेट करना सीखें। लेकिन अगर हम स्वतंत्र होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेंगे तो इस ढंग से हमें रिएक्शन मिलेंगे। आज इतना बड़ा संकट आया हुआ है केदारनाथ में, कोई भी साधारण व्यक्ति ये नहीं सोच रहा, राजनेता नहीं सोच रहे, साइंटिस्ट ये नहीं सोच रहे कि देवतागण अप्रसन्न है। किसी की स्टेटमेंट आई है ऐसे कि देवतागण अप्रसन्न है, हमें कुछ करना चाहिए, यज्ञ करना? नहीं, सब साइंटिफिक रीजन दे रहे हैं, सॉइल इरोजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे देवतागण अप्रसन्न है, आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। देवतागणों के लिए अप्रसन्नता इस ढंग से जाहिर कर रहे हैं। इंद्र अप्रसन्न थे, उसने समर्थक बादलों को भेज दिया था ब्रज में ऊपर, इतनी शक्ति है देवताओं में, तो ये अप्रसन्न हो गया, थोड़ा सा, ये तो बहुत थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है। तो कोई भी ये रियलाइज नहीं कर रहा कि मुख्य कारण क्या है। हमारा जीवन शैली, हम जिस ढंग से जीवन जी रहे हैं, वैदिक संस्कृति का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे, कोई यज्ञ नहीं कर रहे, तो इस आधुनिक संस्कृति में हम लोग सब लेना लेना करते हुए हम जो देने की संस्कृति है, यज्ञ करने की संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। क्या होता था वैदिक संस्कृति में, जैसे कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में किसको सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बताया जाता था? संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी लोग क्या बोलते हैं, कौन सा आश्रम सबसे सौभाग्यशाली बनाया था? संन्यास आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कौन सा सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है? ब्रह्मचारी आश्रम। कौन सा आश्रम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आश्रम बताया गया था बताइए? गृहस्थ आश्रम। वास्तव में गृहस्थ आश्रम, क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उनको सुविधा थी कि बाकी 3 आश्रम में रहने वाले लोगों की वो सेवा कर सके। इसका हमको इंस्पिरेशन ही दे रहे ब्रह्मचारी को गृहस्थ बनना के लिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में ये बहुत बड़ी सुविधा थी कि 3 आश्रम को वो पालन कर सकते हैं, सेवा करने का मौका मिलता था। एक गृहस्थ आश्रम इवन भोजन खाने से पहले वो 3 बार ही पुकारता था किसी को, कोई है, कोई भोजन करना चाहता है, कोई भोजन करना चाहता है, कोई भोजन करना चाहता है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, धीरे से बोलते कोई खाने। जोर से चिल्लाता था और इच्छा करता था कोई आए और पाए, उसको देने की इच्छा थी। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली, आजकल हमें ट्राई भी नहीं कर सकते। आजकल बेचारा घर में रहा खुद चिल्लाता है भोजन दो भोजन दो। तो बोला था बाहर चलो बाहर चलो बाहर के खाएंगे, है ना, घर में भोजन नहीं है। तो ये देने के होता था, सब देना चाहते थे खुशी खुशी, और देते देते क्या होता था, अपने आप वैराग्य आ जाता था, स्वतः ही अपने आप वैराग्य आता था। सारे के सारे यज्ञ करते थे, देते थे, शेयर करते थे। आज देखिए पहले घर में कितने बच्चे होते थे, 10-12 बच्चे तो बड़े कॉमन चीज होते थे। पुराने परिवारों में बात करो 15 बच्चे, 15 भाई बहन हम लोग, 20 हैं, 10 हैं, और आपस में जब इतने सब बच्चे हैं तो शेयर करना सीखते हैं। एक ही कमरे में 10 बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सब कुछ, खाना भी शेयर कर रहे हैं, रहना भी शेयर, सब तो कॉपरेट करना सीख जाते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, एक ही बच्चा है किससे कॉपरेट करेगा, वो राजा बेटा बन जाता है शुरू से राजा। और फिर स्कूल्स में क्या सिस्टम है कि जो फर्स्ट आएगा वही अच्छा है, तो एक फर्स्ट आएगा बाकी सबको नीचे होना पड़ेगा, कंपटीशन है। तो मॉडर्न जो सोसाइटी है आधुनिक युग में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पर्धा को, लेकिन वैदिक संस्कृति में कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाता था। वो कॉपरेट करना सीखते थे, और जब कॉपरेट करना सीखते थे तो त्याग करना सीखते थे, नेचुरल है, कॉपरेशन में त्याग होगा ही होगा। अब कोई त्याग करना नहीं चाहता, इसलिए छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हैं, और सभी लोग इतने कुंठित रहते हैं, इतने एजिटेटेड रहते हैं, कि हर किसी को, हर किसी की इच्छाएं असीमित हैं और वो चाहता है कि मैं ही सब भोगूं, तो बड़ा कंपटीशन है। और देखिए पूरी सोसाइटी में हर कोई असंतुष्ट है, क्योंकि बेसिक्स ही हमारे गलत हैं। जो भगवान ने सृष्टि की रचना इस ढंग से नहीं की गई, अगर गाड़ी को आप सही ढंग से चलाएंगे नहीं तो गाड़ी तो समस्या देगी देगी। तो पूरा जो मनुष्य जीवन बताया गया है, भगवान ने जो इस सृष्टि की रचना की, साथ में हमें द्रव्य दिए और साथ में ज्ञान दिया, बोले इस द्रव्य और ज्ञान का उपयोग करके यज्ञ करो, मुझे वापिस दो। ये जो वापिस देने की विधि को यज्ञ कहते हैं, वापिस दो मुझे द्रव्य और ज्ञान, इसका उपयोग करो। ये भगवद्गीता में समझाया गया है। लेकिन अब हम जो हमें ज्ञान है वो है नहीं, अज्ञानता में है, और जो द्रव्य है उसका उपयोग अज्ञानता में अपने लिए कर रहे हैं। तो अज्ञानता के कारण हम पाप में जीवन कर रहे हैं। और श्रीला प्रभु कहते हैं इस पाप में जीवन की मल्टीपल रिएक्शन हमें मिलती है, मल्टीपल रिएक्शन, और मल्टीपल रिएक्शन इतनी ज्यादा होती हैं कि इस भौतिक जगत से हमारा छुटपाना लगभग असंभव हो जाता है। एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक निम्न योनि, इतने हमें रिएक्शन हमें मिलते हैं अज्ञानता के कारण। तो कितनी आवश्यकता है प्रचार की, कि हम लोगों को बताएं किस ढंग से, और खुद भी समझें कि कितना आवश्यक है हम जाने कि हमारे ऊपर की कुछ अथॉरिटीज हैं जो हमें सब कुछ दे रही हैं। इससे व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है, ऊपर देखेगा हाँ मुझे कुछ चाहिए, प्रार्थना करेगा और वो नियमित जीवन जिएगा। अभी हम सोचते बिल्कुल हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा बात हो गई कि लोग सोचने लगे कि चंद्रमा पे जाके फ्लैट्स बनाएंगे। आप सोचिए, आप सोच देखिए कहां तक चले गए। ये जो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं किस लिए, ये सब कुछ हमारे भोग के लिए है ना। अब पृथ्वी पे जगह कम पड़ रही है तो वहां चंद्रमा पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे। अब लोग पहले यहां पे विवाह यज्ञ करते थे पृथ्वी पर, अब पृथ्वी पर ये विवाह नहीं करेंगे, बोट पे जाएंगे, स्टीमर में जाके विवाह करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कुछ अच्छा नहीं है, अब हवाई जहाज में विवाह करेंगे, कहीं ऐसे ऐसे हवाई जहाज में। अब सोचे विवाह यहाँ नहीं, मून पे करेंगे, वहां पे जाके, है ना, समथिंग डिफरेंट। ये सब हमारे भोग के लिए है, क्योंकि जानते हैं कि मून देवता जो चंद्र देवता है वही आपको सब कुछ दे रहे हैं। जो हम सब्जी खाते हैं उसमें जो टेस्ट है वो चंद्रमा देव की कृपा है। जो हमारे मन को नियंत्रण कर रहे हैं वो चंद्रदेव कर रहे हैं। जो औषधियों में शक्ति है वो चंद्रदेव के कारण आ रही है, किसी को नहीं पता, कोई जानते नहीं है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। और यज्ञ के द्वारा हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, हम उनको वापस देते हैं, और इससे हम पाप से बचते हैं। वैदिक संस्कृति में क्या होता था, गायें हैं, बैल है, हम उनका बहुत ख्याल रखते थे। गायें बैल के द्वारा फसल होगी, उसके बाद अनाज घर में आया, जब पहला अनाज उगता था वो भगवान को भोग लगाया जाता था, उसको बोलते नवा आनंद, ऐसा कुछ संस्कार होता था। अभी भी हम गांवों में देखते हैं बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं, उसका हमें पीछे कारण नहीं मालूम होता, लेकिन मुख्यतः कारण यही है कि हम अपनी कृतज्ञता भगवान को प्रकट कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सारा का सारा संस्कृति में एक पर्सनलिज्म था। हम क्या पॉइंट कर रहे थे, हाँ चंद्रमा, सभी देवतागण हमें कुछ प्रदान करते थे और हम वापिस देते थे, तो इस देने की विधि को यज्ञ कहते हैं। तो जैसे कि फसल हुई, फसल का पहला जो अनाज उत्पन्न हुआ वो भगवान को समर्पित किया गया, तो इसको भी एक यज्ञ बोले गए। आजकल इसका कुछ हमें ज्ञान ही नहीं है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र सोच रहा है और उसके पास जो भी सुविधाएं हैं, जो भी धन है उसके पास, जो जमीन है, जो भी उसके पास सुविधाएं हैं, उसमें बहुत आसक्त हो जाता है। आप देखिए ब्राह्मण संस्कृति या वैदिक संस्कृति में ये सभ्यता थी कि 50 वर्ष के बाद व्यक्ति खुद ही वानप्रस्थ में चला जाता था, और जब वानप्रस्थ में जाता था तो ये नहीं कि उसके पुत्र उसकी पत्नी खूब जोर जोर से रो रहे हैं क्या हो रहा है, और वो बेचारा रोते रोते जा रहा है ना। आज के दिन हम कल्पना कर सकते हैं 50 के बाद चलो घर से बाहर, चलो चलो बाहर जा रहे हैं, अरे क्या बात मेरे बेटा, अरे उसकी विवाह करूंगा मैं, कम से कम उसको अपना शादी उसके पोते का मुंह तो देख लूँ, है ना। आजकल व्यक्ति बोला जाता है सफल व्यक्ति उसकी मृत्यु यही है कि दोनों गोद में पोता पोती हो, उनको देखते हुए शरीर छोड़ दें। पुराने टाइम में नहीं, चलो बाहर, 50 वर्ष होते वो चला जाता था, और बड़े बड़े राजा चले आते थे और वन में जाते थे, और वन में जाकर नहीं कि राजा आ रहे हैं मखमली घास होगी उसके लिए, और उसके लिए फिर जो उसके जो पुराने लोगों के घर से कोई उसके लिए खाने की चीज़ें लाते होंगे, नहीं, उसके अच्छे कपड़े डाल के वन में रहता होगा, अच्छा उसका डीलक्स हट बना होगा है ना समथिंग, वहां सब कुछ सुविधाएं होंगी क्योंकि राजा है। नहीं, एक राजा व्यक्ति भी वानप्रस्थ वन में जा रहा है, छाल के वस्त्र डाल रहा है और बिल्कुल कंद मूल खा रहा है, बस पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर। आप सोचिए राजा, हम देखते हैं भागवतम में पृथ्वी महाराज गए, स्वयं भगवान के अवतार हैं, पृथ्वी महाराज गए, कर्दम मुनि गए, कपिल भगवान उनके घर में उत्पन्न हुए, घर में प्रकट हुए, स्वयं भगवान फिर भी समय आया चले गए। और ये इतना अर्जेंट था कि स्वयंभू मनु पूरी पृथ्वी के राजा अपने पुत्र प्रियव्रत के पास चले गए कि चलो तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, वापस गृहस्थी में आओ, इसको संभालो, मुझे वानप्रस्थ पे जाना है। इतना अर्जेंट मैटर था, वो कह सकते थे आप करते रहो भैया, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, नारद मुनि मेरे गुरु हैं, करने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके ब्रह्मचार्य के पालन करने से ज्यादा मेरा वानप्रस्थ जाना ज्यादा अर्जेंट है, चलो आइए मेरे को जाने दीजिए। एक बार बॉम्बे में एक जुहू टेम्पल के प्रेसिडेंट थे रसराज प्रभु, तो एक भक्त ने ज्वाइन किया थे ब्रह्मचारी, तो उनके पिताजी आ गए लड़ने, क्या तरीका ये है ये है, वो सब शोर मचा दिया, बल्कि उम्र है भक्ति करने की। पूछा बताइए कौन सी उम्र है, 50-60 साल में। कहते आपकी क्या उम्र है, इतनी है। कहते आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए इसको, बिल्कुल ठीक बोलिए, उम्र नहीं है, जाओ भैया तुम जाओ, आप आ जाओ, आप आएंगे। अरे क्या बता, ये शोर मचा, कोई आने को तैयार नहीं है। और लेकिन उस समय अरे आराम से चले गए, अरे आराम से, स्वयं वो बोला भैया आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन रहे हो, ये कोई बात नहीं है। तो वो बोलते मैं कैसे मानूं इस बात को, नारद मुनि मेरे गुरु हैं। तो बहुत बड़ी सभा हुई, सारे महाजन इकट्ठे हो गए, नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु, इस पर विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहता है, इन्होंने वानप्रस्थ जाना है, कौन सा ज्यादा अर्जेंट है, और पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। तो प्रियव्रत को बोला गया आप वापिस जाइए, और स्वयं मनु वापिस जाइए वानप्रस्थ, इतना अर्जेंट होता था, आजकल तो हम सोच भी नहीं सकते। और कई बारी पत्नी उनके साथ जाती थी, पृथ्वी महाराज के साथ उनकी पत्नी साथ में गई, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के अवतार है। कितना नेचुरल था, नेचुरल वैराग्य उत्पन्न हो जाता था, नेचुरल, क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल ही ऐसा था, शुरू से भी आपको जो भोग की इच्छा भी थी पूरे यज्ञ के द्वारा ऐसे चैनलाइज होती थी कि अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो गया, है ना। इसलिए सती, अगर कोई पति की मृत्यु हो गई है तो स्त्री स्वतः ही सती उसकी जो अग्नि जल रही है उसमें स्वयं अपने प्राण त्याग देती थी, ये तो बाद में कुरीति होगी कि उसको जबरदस्ती की जाता था, उसके अंदर स्वयं इतना प्रेम होता था कि पति के बिना जीवन संभव ही नहीं है, बेकार है जीवन पति के बिना, चुपचाप खुद अग्नि में चली आती थी। वो बड़ा अच्छा बात मानते, बहुत अच्छी उसकी गति हुई है। आप सोचिए आजकल कोई सोच सकता है ऐसा, वो पति क्या बोले इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ है, जीते जीते उस सर खाते रहे, कुछ पैसा नहीं मिलता था, अब इकट्ठा कुछ लाख रुपए मिलेगा, नाउ इज मोर यूजफुल, है ना। उनकी फोटो लटकी हुई हार है, ज्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज पैसा आ गया, और आगे हम क्या करें, है ना। हमारे ऑफिस में एक यंग हमारे कुलीग थे, बिल्कुल यंग, मैरिज के बाद वो पुरी में गए घूमने फिरने अपने एक और मित्र के साथ, वो भी न्यू यंग कपल, और ऐसी दुर्घटना हुई कि दोनों के दोनों जो पति देव थे डूब गए, एक डूबा दूसरे को बचाने गया, दोनों के दोनों की मृत्यु हो गई। तो अब जो पत्नी थी उसके पास क्या ऑप्शन थे कि वो तो या तो नहीं थी या तो पुनः विवाह भी कर सकती थी और ये भी कर सकती थी, लेकिन उसको लगा कि हमारी ये सरकारी कंपनी है, अगर पति चला गया है तो पत्नी को नौकरी मिल सकती है, उसे बड़ा समय पड़ा, ठीक है नौकरी ले लो, तो पति की जगह पत्नी को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई परमानेंट, और कुछ ही महीने के बाद उसे दूसरा विवाह कर लिया, दोनों काम हो गया, है ना, हो गया तो ठीक है, वहाँ से भी फायदा मिल गया, यहाँ से भी हो गया। तो आजकल उसको बोला जाए आपका भी पति गया है आप सती हो जाओ, कोई सती होने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, है ना। हर जगह इंडिपेंडेंस की ट्रेनिंग दी जा रही कि आप स्वतंत्र हो, जबकि ये ट्रेनिंग दी जाए कि आप पूर्ण रूप से निर्भर हो। पूर्ण रूप से निर्भरता का जब हमारे अंदर भाव आएगा कि हर अवस्था में मैं पूर्ण रूप पर निर्भर हूँ, मैं इतना निर्भर हूँ कि मैं अपनी आंखें भी नहीं झपक सकता, इतना निर्भर हूँ, तो जब निर्भरता का भाव आएगा तो हम अपने आप विनम्र होंगे, नहीं तो बहुत बड़े मोह में हैं हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। थोड़ा सा हमारे पास धन आ जाए, शक्ति आ जाए, हम अपने आप को भोक्ता समझना शुरू कर देते हैं, इसलिए प्रकृति के हमें फिर ये परिणाम मिलते हैं। तो इस साइंस को हमने समझना है, और जो यज्ञ हैं ये एक सेतु का काम करते हैं। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं तो तो हम कर्म कांड यज्ञ करें। कर्म कांड यज्ञ करके व्यक्ति इस पृथ्वी लोक से कहां पहुंच जाएगा? स्वर्ग लोक में। और अगर हम निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं तो ज्ञान कांड यज्ञ करें, तो हम निर्विशेष ब्रह्म में चले जाएंगे। और भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति में यज्ञ करें। तो भगवान अपने आप को यज्ञ, तीनों ही अवस्था में जो यज्ञ है वो भगवान है। भागवतम के चौथे स्कंध में वर्णन आता है कि महाराजा पृथु द्वारा उपदेश, उसमें वर्णन बताया था चौथे स्कंध के 31वें अध्याय के 34वें श्लोक में, श्री भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है, किंतु फिर भी बद जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। बताया जा रहा है हालांकि भगवान दिव्य हैं, किंतु फिर भी बद जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों और उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। यानी कि भगवान दिव्य हैं, भगवान का हमारी भौतिक इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है, भगवान का भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान हमें सुविधा प्रदान कर रहे हैं हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो क्या कर रहे हैं? अगर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कोई कर्मकांड यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। अगर भगवान हमारे द्वारा अर्पित किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे जीवन की सफलता है। ये भगवान कितनी हमें सुविधा प्रदान कर रहे, ताकि भगवान चाहते हैं हम वापस उनके जगत में आए और अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें। तो चाहे कर्मकांड यज्ञ करें या ज्ञान कांड यज्ञ करें, हम धीरे धीरे अपने आप को इस संघ से शुद्ध कर सकते हैं और अंततः क्या स्थिति आ जाएगी? व्यक्ति ब्राह्मण सत्वगुण के स्तर पर आ जाएगा और धीरे धीरे अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। और हमारे आचार्य ग्रंथ बताते हैं कि ये अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम कभक्ति उत्तमा, ये जो श्लोक है, ये जो स्थिति है, ये हमारे जीवन का मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। हाँ, मुझे यहां तक पहुंचना है, मेरे हृदय में किसी और प्रकार की इच्छा ना हो, केवल हृदय में केवल एक ही इच्छा हो, कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये हमारा मिशन स्टेटमेंट। हम मिशन स्टेटमेंट का अर्थ है जैसे कंपनीज का आजकल मिशन स्टेटमेंट होता है, देखा आपने किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट कि विल प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यू नो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर गोल, ये मिशन स्टेटमेंट है। तो अपने सारे एम्प्लॉयज को जैसे वो ट्रेन करते हैं कि आपने जो भी डीलिंग्स करनी है इस ढंग से मिशन स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए, और इसी मिशन स्टेटमेंट के अनुसार से सारी प्लानिंग होती है, सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं। इसी ढंग से हमारे जीवन का ये मिशन स्टेटमेंट है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और किसी प्रकार की इच्छा हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसके पीछे ये उद्देश्य हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम। शिवजी गोस्वामी पाद बताते हैं इस श्लोक की टीका में, भक्ति रसामृत श्लोक टीका में, कि जो अनुशीलनम शब्द है इसका अर्थ है कल्टीवेट करना, सिंचन करना, कुछ क्रियाएं करना। तो इसके दो अर्थ हैं कि हमें अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी इच्छाओं से मुक्त होना है, अपनी चेष्टाओं में भी और भाव में भी। जो हमें कल्टीवेशन करना है, सिंचन करना है, चेष्टाओं में भी करना है और भाव में भी करना है, क्रियाएं भी ऐसे करनी है और साथ ही साथ अपने हृदय का अवलोकन करके देखें कि हमारे भाव क्या है। हम भोक्ता बनना चाह रहे हैं कि सेवक बनना चाह रहे हैं? फिर भी अगर हम लोग भक्ति की क्रियाओं में जुड़े हैं और हमारे अंदर पूर्ण रूप से ये भाव नहीं आया कि हमें सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भक्ति के प्रोसेस में इतनी शक्ति है कि धीरे 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 स्वतः ही हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। लेकिन एक साधक को इस विजन को, इस दृष्टि को भूलना नहीं चाहिए कि मुझे प्रयास करते रहना है अन्य अभिलाषिता शून्यम की ओर पढ़ने के लिए। वो भरसक प्रयास करता रहे, अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है भी नहीं, फिर वो प्रयास में लगा रहेगा, अपने सिंसियर प्रयास करेगा तो अंततः वो स्थिति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भक्ति के प्रोसेस में बहुत शक्ति है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने 1967 के एक रूम कन्वर्सेशन में बताया कि एनीथिंग नाइस विच हैज टू बी प्रेजेंटेड इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स ऑस्टेरिटी और दैट इज कॉल्ड यज्ञ। कुछ भी अच्छा हम इस संसार में देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तपस्या की आवश्यकता है, इसलिए इसको यज्ञ कहते हैं। हम लोगों को बताया जाता है कि आजकल कलयुग है, कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते, सत्युग में जो इस आज जो प्रसंग सत्युग का चल रहा है, सभी के सभी जीव बहुत शांत थे, निर्वैर थे, सबके सब भगवान की भक्ति में लगना चाहते थे, उनकी इच्छाएं बड़ी शुद्ध थी। त्रेता युग में भक्तों लोगों को धर्मस या ब्रह्मवादी बोला जाता था कि वो यज्ञ का सहारा लेकर अपने आप को शुद्ध करना चाहते थे। द्वापर युग में उनको जिज्ञासवा बताया गया श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में कि वो जिज्ञासु थे जानने के बारे में। एक करभजन मुनि बता रहे हैं राजा निमि को, तो जिज्ञासा करना चाहते थे। कलयुग में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है। तो कलयुग में क्या बताया गया, हरे नाम हे केवलम कलौ नास्तेव अन्यथा, केवल हरे का नाम, केवल हरे का नाम, केवल हरे का नाम। जब हम सुनते हैं कलयुग में कुछ नहीं हो सकता तो केवल हरि नाम है, लेकिन इस हरि नाम को भी हमने एक यज्ञ के रूप में लेना है। हम लोग इसको समझते नहीं हैं और बोले बस आजकल तो बहुत आसान है, कलयुग में बहुत आसान है जी हरि नाम। प्रभुपाद बोलते हैं ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत तामझाम नहीं करना, लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। किसी भी यज्ञ के मुख्यतः तीन पहलू होते हैं। यज्ञ करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, दूसरा बहुत बड़े बड़े प्रबंध करने पड़ते हैं, और तीसरा उसका परिणाम। इसी ढंग से जब हम हरिनाम संकीर्तन निकालें तो हमें देखना चाहिए कितनी तपस्या हो रही है, क्या प्रबंधन में हो रहा है और क्या परिणाम आ रहा है। तपस्या, हरिनाम संकीर्तन कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हम लोग हरिनाम संकीर्तन तब तक भाग लेते हैं जब तक हमें अच्छा लगता है। हम जानते हैं हिज होलीनेस इंद्रदुम स्वामी महाराज वो पोलैंड में फेस्टिवल करते हैं, और हमने वो पॉलिश फेस्टिवल की अपने सीडी भी देखी होगी। उस सीडी में देखते हैं कि महाराज अपने भक्तों के साथ बीच पे हैं, समुद्र के बीच पर, है ना, और समुद्र के बीच में लोग सन बेदिंग कर रहे हैं, आधे उल्टे कपड़े डाले हुए हैं, और महाराज सब भक्तों के साथ उस बीच पे जा रहे हैं। तो हमें देख लगता है वाह क्या इन्जॉयबल बात है, वाह तो बढ़िया अच्छा है, वातावरण है, आराम से घूमेंगे, अच्छा है। लेकिन वो क्यों घूमने नहीं जाते, उस गर्मी के अंदर बालू पे 6-6 घंटे चलते हैं। सर देखा किसी ने एक्सपीरियंस लिया है बालू में कितनी देर चले हम, 5-5, 6-6 घंटे वो बोलते रहना, धूप के अंदर कीर्तन करना, कितने शरीर की ऑस्टेरिटी है। और मन की क्या तपस्या है कि उल्टे सीधे लोगों ने कपड़े डाले हुए उसको देखकर भी विचलित नहीं होना, और ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले 20 साल से तपस्या है ना। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर करेंगे थक गया चलो जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, रेस्ट करूँगा, फिर इच्छा होगी तो हम आएंगे। लेकिन इसको यज्ञ है, ये तपस्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और प्रभु ने बोला एनीथिंग नाइस, और बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आप उनका वीडियो देखेंगे कैसे वो करते हैं, आगे पुरुष हैं, पीछे स्त्री हैं, और स्त्री की भी 2 रो हैं, एक जो फ्रंट रो है उसमें स्त्रियाँ, सभी स्त्रियों ने बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ डाली हुई हैं, आभूषण डाले हैं। जो फ्रंट रोज वाली वो लेडीज को क्वींस बोलती हैं, रानियां, और उनका विशेष श्रृंगार, उनको गोपी डॉट्स ऐसे लगाए होते हैं। क्यों मुख्यतः है कि इसका उद्देश्य है कि वो सबका ध्यान आकर्षित करें और सबके अंदर इंटरेस्ट जागृत करें कि कौन है लोग, है ना, तो ये मुख्यतः उद्देश्य है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्त्री हैं, पुरुष हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से कीर्तन होता है, है ना। तो इसके लिए सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं कि चलो जी कैसे भी शुरू कर दो जी, है ना। हम लोग अक्सर संकीर्तन करते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन जो मर्जी कर ले, एक चीज़ की हमेशा हमें कमी महसूस होती है, क्या होता है वो, क्या खराब हो जाता है, साउंड सिस्टम। पूरा हमारा जो प्रोसेस है कीर्तन के ऊपर है, शब्द ध्वनि के ऊपर, और सबसे पहले क्या पंक्चर होता है, साउंड सिस्टम। बेचारा जो वक्त है वो बोलता था आवाज ही नहीं पहुंच रही, वो चिल्लाता रहता है कुं कां कुं आता रहेगा, लेकिन हरिनाम सुनाई नहीं देगा। ऑर्गेनाइजेशन, सारा ऑर्गेनाइज करना है, पहले किसको जाना है, पीछे किसने आना है, ये ऐसे नहीं ऑटोमेटिक हो गया, इसको यज्ञ के रूप में लेना है, इसको पीछे तपस्या करनी है, और बैकग्राउंड में पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या तपस्या करनी है, फिर इसका परिणाम क्या होगा। जिसने एक बार भी हरिनाम सुन लिया वो शुद्ध हो जाएगा, और किसी ने हमें ज्वाइन कर लिया भगवान के इस प्रोसेशन में, वो कितना आगे भक्ति में आगे बढ़ेगा। एक बार हरिनाम कहने, एक बार हरिनाम सुनने से उसकी भगवत धाम जाने की यात्रा शुरू हो गई, कितना बड़ा परिणाम। लेकिन अगर हमने तपस्या की हो, हाँ जी, हाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। अच्छा कि आपने याद दिला दिया, एक एक टाइम में 7,000 फ्लायर बांटे जाते हैं, गिन के आते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। ये नहीं बट गए नहीं बटे, इसको यज्ञ के रूप में लेना है। पूर्व काल में जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण कितना बड़ा अरेंजमेंट करते थे, तब जाके भगवान प्रकट होते थे। ऐसे ही ढीला डाला कुछ ईटें इकट्ठी कर ले, वाह बोल के भगवान थोड़ी प्रकट होंगे, फिर भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले आजकल तो आसान है, हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम। अरे हरि नाम के लिए भी तपस्या करो, जो तपस्या कर सकते हैं वो तो करें, तपस्या करें, अच्छा ऑर्गेनाइज करें। ऐसे ढील ढला कुछ भी कर लें, हरि नाम सब चलते हैं, हरि नाम में हरि बोल हरि बोल, नहीं वो हॉरिबल हो जाएगा। उसको लोग कहते हैं हॉरिबल हरि बोल, क्या हॉरिबल है आपका अरेंजमेंट, इतना सुंदर आपका हरि नाम है, इतना सुंदर आपकी वस्मृति है, इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करें और फिर इसका हम परिणाम देखें क्या होगा, इसको यज्ञ के रूप में। इसी वजह से भगवान कहते हैं यज्ञानां जप यज्ञस्मि, जप करना भी एक यज्ञ है। हमने यज्ञ करते हुए किसी ब्राह्मणों को देखा है सो गया, मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर रहा, हरि बोल प्रभु ब्राह्मण जी उठिए, अगर ऐसा वो करता तो बेचारी जो बूढ़ी गई तो मरी जाती, वो जल जाती। यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण इतना उत्कृष्ट और इतना एग्जैक्ट होना चाहिए था, उसकी मीटर उसकी टोन, तब जाके परिणाम मिलता था। उसे पूरा मंत्र नहीं बोला, अरे कुछ कर दिया उसने, मंत्र आधा बोल दिया, बेचारी गाय बूढ़ी गाय डाली तो चल के मर जाएगी। वैसे उसके अंदर मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी, गाय को डाला बूढ़ी गाय को डाला नई गाय बाहर आ गई, इतना उसमें कॉन्फिडेंस होता था अपने मंत्रों के उच्चारण पे, इतनी प्रैक्टिस होती थी। तो जप यज्ञ में भी तपस्या होनी चाहिए। हम कोशिश करें सीधा बैठकर ध्यान पूर्वक सुने, मंत्र पूरा बोले, मंत्र को सुने, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, परिणाम तब हृदय शुद्ध होगा। ऑर्गेनाइजेशन पूरा ऑर्गेनाइज करें, यानी कि रात को जागते रहे 12:30 तक, एक दिन उत्साह में प्रभु जी ने बोला जल्दी उठना, जल्दी उठ गए, फिर जप में सो रहे, पूरा ऑर्गेनाइज पिछले दिन से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाना चाहिए कि जल्दी सोना है, प्रसाद रात को लाइट लेना है, सुबह का सारा अरेंजमेंट कर लूं, सुबह सुबह ढूंढ रहा हूं धोती कहाँ है, अरे वो कहाँ है धोती कहाँ है, कुर्ता कहाँ है, इतने भी मंगल आरती निकल गई है ना, ऑर्गेनाइज नहीं किया, कोई मिलने ही आ गया 5 बजे, उसके साथ बैठ के बातें करने लगे, अरे सुबह का टाइम कुछ नहीं, पूरा ऑर्गेनाइज करो, ये केवल जप के लिए, बस ये यज्ञ है भैया यज्ञ। अभी भी हम लोगों में वो मानसिकता है, जब यज्ञ होगा लोग बड़ी सीरियसली लेते हैं, हमारे घर का जी घर प्रवेश है, हम यज्ञ कर रहे हैं, हाँ ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, आप लोग कब आएंगे कीर्तन कर, आ जाना कभी भी यज्ञ करो, बात कोई बड़े कैजुअल होते हैं कभी भी आ जाएंगे, हरिनाम तो कोई टाइम तो है नहीं, कभी भी शुरू कर देंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, यज्ञ के अंदर कुछ है, कोई कुछ समझ में आ जाता तो वो कुछ अच्छी बातें बोल रहे होंगे। पुराने जमाने में 8 फिल्म आती थी, देखते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता कोई अच्छी बात, उसको अवार्ड भी मिल जाता था। तो हमारे लिए भी यज्ञ ऐसे हैं, कुछ वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, ठीक है जी कोई बड़ी बात होगी, हरे कृष्ण महामंत्र हर कोई बोलता है, सबको मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो रोज करते हैं, नहीं, यही इस कलयुग का एकमात्र विधि है। इसमें हम तपस्या बलिदान, आपने सेक्रीफाइस क्या किया, बिना यज्ञ के गति नहीं है। हम अपने रोज के देखें चार्ट में देखें आज के दिन में मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, लेना 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 लेना, अभी तक वो मेंटेलिटी चल रही है, क्या सेक्रीफाइस किया, किसी भक्त की सेवा करने के लिए मैंने क्या त्यागा, हरि नाम लेने के लिए मैंने त्याग क्या त्याग किया, रात को लेट सो गया था फिर भी जल्दी उठ गया, अपनी नींद का त्याग किया, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से उनको पोस्टपोन किया, त्याग किया मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये यज्ञ है, इसमें तपस्या होनी चाहिए, पूरे अच्छे ढंग से प्रबंध करने चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में, हम कोई सोचते ही नहीं है। अधिकांशतः भक्तों की समस्या है टाइम मैनेजमेंट, किस समय यज्ञ करना है, किस समय जप करना है, किस समय अध्ययन करना है, ये सब यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए, कोई प्रबंध नहीं है, कोई अरेंज कोई प्लानिंग नहीं है, और उल्टे सीधे जो कार्य है उनकी पूरी प्लानिंग है हमारे पास, जो अपनी प्रसन्नता के लिए है, अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, अपने समाज की प्रसन्नता के लिए, उससे पूरी योजनाएं हैं उसको, वो हमारे लिए यज्ञ बना हुआ है। लेकिन जो असली यज्ञ है, जो इस कलयुग की विधि है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, उसके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम इसको यज्ञ के रूप में नहीं देखते हैं। और बिना यज्ञ की कोई गति नहीं है, ना इस लोक में हम सुखी रह सकते हैं, ना अगले लोक में हम सुखी रहेंगे। तो जैसा भी हमारा जीवन है, कुछ भी कठिनाइयां हैं, क्योंकि जब हम यज्ञ करेंगे सारी प्रकृति हमसे कॉपरेट करेंगे, सभी देवतागण हमसे कॉपरेट करेंगे। आप देखेंगे अगर आप ध्यान पूर्वक जप करके सुबह सुबह गए हैं, आप अपने काम धंधे में भी जाएंगे, सब चीजें आपको लगे सब चीज आपसे कॉपरेट कर रही है। और अगर आप ایسا نہیں کر کے جاتے تو ہر چیز آپ کو لگتا ہے ہر کوئی میرے اگینسٹ چل رہا ہے, ہر کوئی میرے اگینسٹ چل رہا ہے, کہ آپ نے یگیہ نہیں کیا, ہم نے نہ بھگوان کو پرسن نہیں کیا. اس کو ہم یگیہ کے روپ میں لے کر چلیں, اور جیسے کہ چرچا کی گئی یہ ہری نام ہم صحیح ڈھنگ سے لیتے رہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ویکتیگت جیون میں اور اس بھکتوں کے سمودائے میں ویدک سنسکرتی کو ہم دوبارہ سے استھاپت کریں. جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ پورو کال جب ویدک سنسکرت کے انوسار سے لوگ جیون یاپن کرتے تھے تو اس میں کوئی پاپ نہیں ہوتا تھا. گائے اور بیل سے کھیتی کی, اناج آ گیا, پورا ندیوں میں پانی ہے, سب کچھ آپ کو پراپت ہو رہا ہے, آپ کو کوئی اگر کرم نہیں کرنے پڑتے تھے, تو آپ کسی پاپ کے بھاگی نہیں بنتے تھے. آج کل دھن ارجن کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اگر کرموں کا بھاگی بننا پڑتا ہے. اگر سمجھ لیجیے کسی کا نوکری ڈیم بنانے کی کمپنی میں ہے, ہے نا, ڈیم بناتے ہیں وہ, اب جس نے جس ایریا میں آج کل بدری ناتھ کے ڈیم بنایا ہوگا, اب اس کو بہت ریئیکشن مل رہا ہوگا, کیونکہ یہ سارا کا سارا جو ہوا ہے اگر کرموں کے کارن نا. کوئی سافٹ ویئر کمپنی میں ہے, آئی ٹی انڈسٹری میں, اس سے جو سافٹ ویئر بنتے ہیں وہ سافٹ ویئر سے لوگ پورنوگرافی وغیرہ دیکھ رہے ہیں, وہ ریئیکشن جائے گا سارا, سب ریئیکشنز جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہم کس کمپنی میں ہیں, اور جو ہمارے امپلائر ہیں وہ امپلائر مدیرا پان کرتے ہیں, ماساہار کرتے ہیں, وہ ہمیں دھن دیتے ہیں, ریئیکشن جائے گا سارا, پتہ بھی نہیں چلتا. اور بولے ہم تو اپنا بزنس کرتے ہیں, سماج میں آدان پردان ایسا ہے, کرموں کی گتی اتنی گہن ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پاپوں سے پکڑے جائیں گے, پاپ ہمیں جکڑ لیں گے, اور بڑے کمپلیکس کے ریئیکشنز ہیں, ہے نا. تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی سرکشا کے لیے اس ویدک سنسکرتی کی استھاپنا کرنی ہے. ہم ویکتیگت جیون میں اپنے اندر برہمن کے گن وکست کرنے کا پریاس کریں, اس جپ یگیہ کو سنکیرتن کو اچھے ڈھنگ سے ہم دھیان پوروک کریں, اور پھر جیسے کہ پچھلے شنیوار کو ہم نے چرچا کی تھی, ایک ایسا سمودائے بنانے کا پریاس کریں جس میں بہت ہی نیچرل اور سمپل وے آف لیونگ ہو, پرکرتی کے سمیپ ہو, پراکرتک ہو, اور بہت آسانی سے ہم جیون کی مول آوشیکتاؤں کو پورا کر سکیں. شیلا پربھوپاد جی نے اس کون کی استھاپنا کی, کہ اس کون کے سات ادیشیہ دیے, ان سات ادیشیوں میں ایک ادیشیہ یہ بھی ہے کہ نیچرل اینڈ اے سمپلر وے آف لیونگ, اس ڈھنگ سے ہم پورے سمودائے کو پرشکشن دیں کہ نیچرل پراکرتک اور سادہ جیون ہم بتانے کا پریاس کریں, اس سے ہمیں دھن ارجن کرنے کے لیے پاپ کرنے کی آوشیکتا نہیں ہوگی, پریوار کے پالن کے لیے پاپ کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے, اور یہ سمبھو ہے, ہم چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. یہ کوئی ہم ہوا میں ایسے کوئی بات نہیں کریں, کیونکہ وشو بھر میں آج اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو آج کے شلوک سے ہمیں سیکھتے ہیں کہ یگیہ ہمارے جیون میں بہت مہتوپورن ہے, اور ہم سب کے لیے ہری نام سنکیرتن اور جپ یگیہ ہے. اس ہری نام سنکیرتن اور جپ یگیہ کو ہم بہت دھیان پوروک, اس میں تپسیا تیاگ ہونا چاہیے, اور پورے ہم ویدک سنسکرتی کی استھاپنا اپنے ویکتیگت استر میں, ویکتیگت جیون میں برہمنیکل جو برہمن کے گڑوں کو اپنے جیون میں ہم وکست کریں. برہمن کے گڑ بھگوتا ہم دے گئے ہیں, سما دما تپا شوچم, اپنے آپ کو ہم شدھ رکھیں, تپسیا کریں, اندریوں میں دمن کرنا سیکھیں, یہ جو ہمیں شکشائیں دی جاتی اس کو اپنے جیون میں اتاریں, اور ایک سمودائے کے روپ میں ایک ویدک سنسکرتی کو ہم استھاپت کر سکتے ہیں. اور ویدک سنسکرتی کے جو مکھیہ استمبھ بتائے گئے ہیں وہ گایوں کی رکشا, اور اس کے ساتھ ساتھ برہمنوں کی رکشا, برہمنوں اور گایوں کی رکشا سے نمو برہمنا کو ہتائے چ, نمو برہمنائے دیوائے کو برہمنا ہتائے چ, جگت ہتائے کرشنائے گوویندائے نمو نمو. تو اس ڈھنگ سے ہم یگ کا پالن کر کے اپنے جیون کو ہم سکھی بنا سکتے ہیں. ہرے کرشنا. ایک پرشن ہم لے سکتے ہیں, دو منٹ بچے, کوئی ایک پرشن ہے تو ہاں.
ہر کرشن, جیسے آپ نے بتایا یگیہ کے بارے میں اور ایک سادہ جیون اور اونچا وچار کے بارے میں, اور جس کے لیے مطلب جس کا ادیشیہ ہے کہ برہمنوں کے گن وکست کرنا, ستیہ سمدم شوچم. تو میرا سوال یہ ہے اس میں کہ ہر کسی کا جو مطلب اپنا اپنی پرکرتی ہوتی ہے, تو انسان کی کوئی کسی کا جو ہے سوبھاؤ وہ شتیہ جیسے ہوتا ہے, کسی کا شودر کا ہوتا ہے, کسی کا ویشیہ کا ہوتا ہے, جو کہ بہت ہی مطلب سوابھاوک سوبھاؤ ہے. تو ہر کوئی جس الگ الگ سوبھاؤ کے لوگ جو ہیں ایک ہی پرکار کے گنوں کا وکاس کیسے کر سکتے ہیں, کیا یہ سمبھو ہے اور کیا یہ پراکرتک ہے؟
اچھا پرشن آپ کا. اس میں پھر ہم ایک دوسرا سبجیکٹ ہے کہ کس جنگ سے ہم ورناشرم کا حساب سے چلیں. और जैसे जैसे हमारी प्रकृति के गुण होंगे वैसे वैसे हमारा वर्ण होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन ये एक वर्णाश्रम है, ये एक कंटेनर के समान है, पात्र के समान है, और इसके अंदर जो मुख्य रस है वो है भागवत धर्म यानी कि भगवान की भक्ति। तो वर्ण और आश्रम जो ये एक ढंग से योजना बनाई गई है कि हम चाहे किसी भी वर्ण में हो, हमारा कोई भी कार्य हो, उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। तो इस तरह के गुणों को विकसित करना, और इसमें जो लीडर्स होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, वो जो बताया गया भगवत है ब्राह्मण के, क्योंकि इस समय मुख्यतः ब्राह्मणों की इसलिए आवश्यकता है कि जो सोसाइटी हेडलेस है, लीडर्स भी नहीं है जो मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन जब स्वतः से हम लोग ब्राह्मण का कोई, जैसे हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, चेतना शुद्ध होती है, सेवा में जुड़ते हैं, हमारा वर्ण सामने निकल के आता है कि हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण हैं या क्षत्रिय के हैं या शूद्र के हैं, और उसके अनुसार हम सेवाओं को ले सकते हैं। और उसके बाद मुख्यतः उद्देश्य ये है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो ये वर्णाश्रम के अनुसार काम हो जाए। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो क्लास ठीक 8 बजे शुरू करके 9 बजे समाप्त कर देंगे, तो मैं इसलिए आप सबकी कृपा से इस लक्ष्य को पूरा कर पाया। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथ राशि मन भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, एक और प्रेमानंद।